डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के भजन व्याख्यान 7 2024 ब्रूस वाल्ट के और टेड हिल्डेब्रांट। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्ट के हैं। यह सत्र संख्या 7 है, भजन स्तुति का कारण, भजन धर्मशास्त्र। प्रार्थना, हम अनुग्रह के सभी साधनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, मसीह के खून के लिए जो हमारे पापों के लिए मर गया और हमें सभी पापों से शुद्ध करता है, हमारे हाथों को हमारे कुकर्मों से साफ करता है, हमारे होठों को हमारी खराब वाणी और गलत भाषण से साफ करता है। आपका धन्यवाद कि आपने मसीह में हमें क्षमा कर दिया। इसलिए आज हमारे मंत्रालय में हमारी पर्याप्तता हमारी ओर से नहीं है, बल्कि यह आपकी कृपा है। आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद जिसने आपके शब्द को प्रेरित किया। और अब हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आत्मा आपके वचन को प्रकाशित करेगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इसे सत्यनिष्ठा, शालीनता और बुद्धिमत्ता से संभालने की कृपा प्रदान करेंगे। यह मेरे बारे में नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कितना पापी हूँ, लेकिन आपके बारे में। मैं इस पाठ्यक्रम को सुनने वाले प्रत्येक छात्र के लिए प्रार्थना करता हूँ। कुछ दीन और निराश हैं, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए। और कुछ लोग गौरवान्वित हैं और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं, वे तेरे वचन के प्रति विनम्र हो जाएं। यह एक ही शब्द है, लेकिन हम प्रत्येक छात्र की सेवा अलग अलग ढंग से करेंगे। आपकी आत्मा इसे मसीह के नाम पर उचित रूप से लागू करे। तथास्तु। ठीक है, हम भजन संहिता की पुस्तक के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार कर रहे हैं। हमारा इरादा भजनों के धर्मशास्त्र को विकसित करना नहीं है, या आध्यात्मिक जीवन जिसे हम भजनों से प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि हम सभी छात्रों को भजनों में जीवन भर अध्ययन के लिए उपकरण देना है। मुझे लगता है कि मैं इस पाठ्यक्रम में उन विभिन्न दृष्टिकोणों पर विचार करने में सहायक हो सकता हूँ जिनके द्वारा हम अपनी उन्नति के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक सत्यों के लिए भजनों का उपयोग कर सकते हैं। तो एक दृष्टिकोण ऐतिहासिक दृष्टिकोण था, जिसमें हम उन सुप्रस्क्रिप्ट को स्वीकार करते हैं जो हमें भजन के लेखकत्व प्रदान करते हैं। कई मामलों में उनमें से 73 डेविड द्वारा हैं। मैंने अधिकांश शिक्षाविदों के खिलाफ मामला बनाया है कि वास्तव में वे सुप्रस्क्रिप्ट भरोसेमंद हैं। और वास्तव में, जैसा कि नया नियम भी मानता है, डेविड ने वास्तव में इन भजनों को लिखा है। और हमने उस मामले को यथासंभव सर्वश्रेष्ठ बनाया। भजनों को समझने के हमारे तरीके पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब हम समझते हैं कि भजनों में बोलने वाला मैं ही राजा है। इससे हमें अधिक व्यापक रूप से यह पता लगाने में मदद मिली कि भजनों में राजा एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। भजन अक्सर राजा के बारे में बात करते हैं, यहाँ तक कि उनके बारे में भी जो डेविड के नहीं हैं। तो भजन 84 में, जो एक तीर्थ भजन है, जब वे यरूशलेम पहुँचते हैं तो वे राजा के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वह वही है जो राज्य का प्रतिनिधित्व करता है। और उस शाही व्याख्या के साथ हम खुद को राजा और डेविड के पुत्र के रूप में समझते हैं। वास्तव में डेविड के पुत्र से भी अधिक है, वह भगवान का पुत्र है। इसलिए भजन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन वे राजा के बारे में हैं और इसलिए डेविडिक घराने के बारे में हैं। यीशु दाऊद का पुत्र है और इसलिए वे उसके बारे में बात करते हैं। नए नियम की व्याख्या पुराने नियम पर थोपी गई कोई चीज नहीं है। यह स्वाभाविक रूप से ईश्वर के स्वयं के रहस्योद्घाटन के विकास पथ से विकसित होता है। और हम यह भी जानते हैं कि आज चर्च, आप और मैं, चूंकि हम चर्च में हैं, कि हम मसीह में हैं और हम इब्राहिम के वंश हैं। इसलिए हम मसीह में हैं और वह हमारे लिए प्रार्थना करता है और हम मसीह में प्रार्थना कर रहे हैं। ताकि जब हम प्रार्थना करें तो हम मसीह के साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हों। हम परमेश्वर के पुत्र और दाऊद के पुत्र के साथ एकता में मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इसके गहरे निहितार्थ हैं। दूसरा दृष्टिकोण फॉर्म दृष्टिकोण है, यह समझना कि आप किस प्रकार के साहित्य के साथ काम कर रहे हैं। हमने इसे कविता की व्यापक अवधारणा पर शुरू किया, तो हम इस बात पर गए कि आप कविता कैसे पढ़ते हैं। हमने देखा कि हिब्रू कविता में किसी भी दर पर कविता के तीन पहलू होते हैं। सारी कविताएं संक्षिप्त हैं। यह एक स्लाइड शो की तरह है, गद्य एक चलचित्र की तरह है। तो आपको प्रत्येक कविता के साथ एक बहुत ही परिभाषित तस्वीर मिलती है। आपको यह एक साथ रखना होगा कि जैसे जैसे छंद विकसित होते हैं, वे एक साथ कैसे चलते हैं। तो यह संक्षिप्त है और यह बहुत उन्नत शैली है। यह भाषण के अलंकारों से भरा है। यह हमें दिखाता है कि भगवान स्वयं बहुत सौंदर्यवादी हैं। लेकिन कविता का मूल विचार समानता है। आप एक पंक्ति कहते हैं और फिर आप एक कहते हैं, कोई पुनर्कथन नहीं, बल्कि एक संबंधित कथन जो आपको उस पर एक और दृष्टिकोण देता है। इसलिए हमने कहा, उदाहरण के लिए भजन दो, वह अपने क्रोध में उन्हें डांटेगा, वह उन्हें भयभीत कर देगा, वह अपने क्रोध में उनको डांटेगा, वह अपने क्रोध में उन्हें भयभीत कर देगा। तो जाहिर है कि आपके पास क्रोध और फटकार और आतंकित करने के बीच समानता है, लेकिन फिर डांटना और आतंकित करना वे समानांतर हैं, लेकिन वे एक ही चीज नहीं हैं। वह डांट वही है जो ईश्वर करता है और आतंकित करना डांट का परिणाम है। और इसलिए जब आप हिब्रू कविता पढ़ते हैं तो आप जो करते हैं वह यह है कि आप सत्य को सुनने के स्टीरियोफोनिक तरीके को देखते हैं। आपको इसके दो पहलू मिल रहे हैं और आप सोचें कि ये दोनों रेखाएं किस प्रकार संबंधित हैं और यह लाभदायक है और साथ ही वे कैसे भिन्न हैं। और यह शब्द की सभी प्रकार की समृद्ध अंतर्दृष्टियों में प्रवेश करता है। इसलिए हमने फॉर्म के आखिरी घंटे के अंत में ऐसा किया। हमने एक दी गई कविता को देखा और कोशिश की, हमने भजन 23 किया। बेशक कविता का एक पहलू अलंकार है। संपूर्ण स्तोत्र एक भेड़ और एक गढ़ भूमि का प्रतीक है। यह हमें भजन 23 में दिखाता है कि प्रभु अपने झुंड का भरण पोषण करता है। प्रभु अपने झुंड को पुनः स्थापित करता है। यहोवा अपने झुंड की रक्षा करता है। यह सब इस कल्पना, काल्पनिक भाषा के माध्यम से किया गया है। तो झुंड इसलिए भोजन का प्रावधान है, ठीक है, ग्रीक में, हिब्रू में घास के लिए अलग अलग शब्द हैं। देशा बहुत बेहतरीन घास है, सेंट ऑगस्टीन घास नहीं, बल्कि गोल्फ कोर्स घास, बहुत कोमल घास। और पुनर्स्थापन शांत जल के द्वारा होता है। वह भेड़ों को पुनर्स्थापित करता है क्योंकि भेड़ें बहुत अधिक नहीं ले सकती। फिर भेड़ वापस आ जाती है। भले ही यह सबसे अंधेरी खड्डों से होकर गुजर रहा हो, भेड़ डरती नहीं है क्योंकि भगवान उसके साथ है और उसके पास दुश्मन को नष्ट करने के लिए हथियार हैं। और फिर यह छवि बदल देता है। अब हम एक शेख के तंबू में हैं। इसलिए जब वह वापस आएगा तो उसे भेड़शाला में बंद कर देना इतना अच्छा विचार नहीं था। तो एक भेड़शाला में होने के बजाय हम इस भजनकार के तंबू में हैं और वही सत्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं, क्योंकि अब घास के स्थान पर आपके पास एक मेज है और यह एक कप है जो प्रचुर मात्रा में चल रहा है और इसे वॉटरिंग होल से बदल दिया गया है। अब हम सिर को तरोताजा करने के लिए तेल का अभिषेक करते हैं और यह सब मेरे शत्रुओं की उपस्थिति में सुरक्षा है। तो वह फिर से वही बात कह रहा है, लेकिन भेड़ की एक और छवि के साथ जो अद्भुत है। बेहतर शेख का तंबू और एक मेजबान है, लेकिन फिर वह अंतिम दृश्य के साथ जलवायुगत रूप से समाप्त होता है, जो कि भजन की सच्चाई मंदिर है। मैं यहोवा के भवन अर्थात मंदिर में लौट आऊंगा, और वहां वह हमें बताते हैं कि यह प्रावधान किसकी रक्षा करता है। यदि आप इसे गद्य में रखना चाहते हैं और इसे अमूर्त करना चाहते हैं, तो मैं जिस बारे में बात कर रहा हूं वह भगवान की भलाई और हमारे प्रति उनकी वफादारी है। तो आपको भजन के अंत में इसकी शाब्दिक व्याख्या मिल जाएगी कि यह सब क्या है। लेकिन मुद्दा यह है कि मैंने यह वर्णन करने के लिए भजन का उपयोग करने की कोशिश की है कि यह आलंकारिक भाषा है। सच तो यह है कि जब भी हम ईश्वर के बारे में बात करते हैं, जहां ईश्वर आत्मा है, हम ईश्वर के बारे में जो कुछ भी कहते हैं वह आलंकारिक होता है, रूपक होता है, और हम ईश्वर का वर्णन केवल इन रूपकों में ही कर सकते हैं। मैं ईश्वर के बारे में रूपकों को बदलने से इनकार करता हूं। इसलिए यदि ईश्वर स्वयं को एक पिता के रूप में प्रस्तुत करता है और यह हमारे साथ उसके रिश्ते का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक रूपक है, तो मैं उस छवि को मां के रूप में नहीं बदल सकता। लेकिन जब मैंने ऐसा किया, तो मैंने ईश्वर को समझने के अपने तरीके को मौलिक रूप से बदल दिया। इसलिए मुझे इसके बीच में इसके ही रूपकों के साथ रहना होगा। हम कविता से आगे बढ़कर भजनों के साथ और अधिक सुंदरता की ओर बढ़ते हैं, और अब हम स्तोत्र के विभिन्न रूपों के बारे में बात कर रहे थे। यह तब है जब मैंने कल आलोचना के स्वरूप, इसकी ताकत और इसकी कमजोरियों की पूरी पृष्ठभूमि दी, और यह उच्च आलोचना के परिणाम स्वरूप कैसे उत्पन्न हुई। लेकिन किसी भी मामले में हमने देखा कि फॉर्म आलोचना की चिंता, जो जर्मनिक विद्वता से आती है, इसलिए वे इसके बारे में बात करते हैं, और मैं जर्मन शब्दों का उपयोग करूंगा क्योंकि साहित्य में इसका उपयोग किया जाता है। और इसलिए जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप इन शर्तों को देखेंगे। आप सिट्स इन लेबेन देखने जा रहे हैं, जिसका अर्थ है जीवन में सेटिंग। स्तोत्र की उत्पत्ति कहां से हुई? अब जो मूल रूप से आलोचना के गंकेल रूप थे, उन्होंने डेविडिक लेखकत्व को खारिज कर दिया था। उन्हें ऐतिहासिक संदर्भ की आवश्यकता थी, और इसलिए उन्होंने पूछा, जीवन में वह सेटिंग क्या थी जहां इसे प्रसारित किया गया था, जहां इस भजन की उत्पत्ति हुई थी। मुझे लगता है कि कुछ भजन, जैसे कि उसके भजन जिन्हें हम देखने जा रहे हैं, और आभारी प्रशंसा के गीत मंदिर में उत्पन्न हुए थे, शायद गायकों के संघों के साथ। मुझे लगता है कि उनकी उत्पत्ति भी डेविड से हुई, जिन्होंने मंदिर का डिजाइन तैयार किया था और जो मंदिर की प्रतीक्षा कर रहे थे, और मुझे संदेह है कि उन्होंने इस आशा से भजनों की रचना की थी कि वहां एक मंदिर होगा। उन्होंने मंदिर के लिए सारा धन, सारा भंडार मंदिर के लिए अलग रख दिया था। उन्होंने ही मंदिर का डिजाइन दिया था। वह पुरस्कार विजेता कवि थे जिन्होंने मंदिर के लिए समर्पित गीत भजन 30 लिखा था, और इसलिए मुझे लगता है कि उसने मंदिर के लिए भजन भी तैयार किए होंगे। इसलिए वह उन भजनों का लेखक हो सकता है जो मंदिर के लिए थे। मैं वास्तव में निश्चित नहीं हूं कि उनके मन में प्रार्थना के भजन मूल रूप से मंदिर के लिए थे या नहीं। मैं यह नहीं जानता, यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैं जो जानता हूं वह यह है कि अंततः उनकी अत्यधिक वेदना, दर्द, विरोध और ईश्वर के न्याय के साथ संघर्ष की कविताएं अंततः मंदिर की पूजा में समाप्त हो गईं, क्योंकि उन्हें संगीत निर्देशक को सौंप दिया गया था, जिसका मतलब अब डेविड के लिए व्यक्तिगत था। अब यह हम सभी पर लागू होता है। इससे हमें इन भजनों को अपने लिए उपयोग करने का लाइसेंस मिल जाता है, क्योंकि इन्हें संगीत निर्देशक को सौंप दिया गया था। तो उनकी याचिकाएं और उनकी प्रशंसाएं हमारे उपयोग के लिए थीं, हमारी याचिकाएं और उनके राजा के संबंध में पूरे समुदाय के लिए हमारी प्रशंसाएं थीं। तो यह आपको इन भजनों को देखने का एक अलग तरीका देना शुरू कर देता है। अब मैं देख रहा हूं और फिर मैंने कहा है कि उन्हें समूहीकृत किया गया है। गुमकेल ने उन्हें सामान्य शब्दों, सामान्य मनोदशा, सामान्य रूपांकनों और इत्यादि के आधार पर समूहीकृत किया है। उन्होंने पांच बुनियादी प्रकार के स्तोत्रों के साथ अंत किया। ये वो भजन थे जो प्रशंसा के गीत थे। मैं गलत सोचता हूं, दुर्भाग्य से यह बहुत मजबूत शब्द है। उन्होंने शाही स्तोत्रों को 10 स्तोत्रों तक सीमित कर दिया जिनमें राजा का उल्लेख था। इसलिए भजन 2, उदाहरण के लिए, मैंने अपने राजा को सियोन, अपनी पवित्र पहाड़ी पर स्थापित किया है। उन्होंने इसे शाही स्तोत्र कहा। राजा की विजयों के बारे में भजन 18, भजन 20, जहां राजा युद्ध के लिए निकलता है और जब राजा युद्ध के लिए जाता है तो पुजारी और लोग उसके लिए प्रार्थना करते हैं। भजन 21, राजा युद्ध से विजयी होकर लौटा। भजन 45, राजा के लिए एक विवाह गीत है। भजन 110, एक राज्याभिषेक पूजा है। मैंने निर्धारित किया है वह मलिकिसिदक जैसा राजा है और यह राजा के बारे में है। तो आपके पास 10 भजन हैं जो स्पष्ट रूप से राजा का उल्लेख करते हैं, लेकिन वे सभी एक साथ समूहीकृत नहीं हैं, केवल भजन के माध्यम से छिड़के गए हैं, क्योंकि पूरे भजन में आंख मूल रूप से राजा है। इनमें विशिष्ट परिस्थितियों पर राजा का उल्लेख होता है। तो यह दूसरी श्रेणी है। यह एक ऐसी श्रेणी है जिस पर मेरा अधिकार नहीं है। यह मेरे लिए बहुत प्रतिबंधित है। तीसरा ग्रुप भजन के बाद का है। उनका तीसरा समूह था, वे उन्हें शिकायत स्तोत्र कहते थे। वे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इन्हें शिकायत कहा जा सकता है। इन्हें विलाप कहा जा सकता है। इन्हें याचिका कहा जा सकता है। जैसा कि हम देखेंगे, इन स्तोत्रों में अलग अलग रूपांकन हैं और जिन स्तोत्रों को हम याचना कह सकते हैं, उनके भीतर एक रूपक के रूप में उनमें विलाप है या उनमें शिकायत है। और इसलिए आप या तो उन्हें एक मूल भाव से बुला सकते हैं जो कि याचिका है। जहां तक मेरी जानकारी है, भजन 63 को छोड़कर लगभग सभी में याचिका है या उनके पास विलाप है, और आप विलाप या शिकायत कह सकते हैं क्योंकि कभी कभी वे अपनी स्थिति पर विलाप कर रहे होते हैं जिसमें वे खुद को पाते हैं, या वे विरोध कर रहे होते हैं कि यह अन्यायपूर्ण है कि हम इस स्थिति में हैं, और वहां आप उसे शिकायत कह सकते हैं। यह भेद आमतौर पर साहित्य में नहीं किया जाता है, लेकिन यह एक सार्थक अंतर है। लेकिन इसलिए उन्होंने उन सभी को एक साथ समूहित किया और उन्होंने इसे शिकायत कहा। मैं कहता हूं कि साहित्य में शिकायत, विलाप, याचिका और विभिन्न नामों का उपयोग किया जाता है। मैं आंशिक रूप से आपके छात्रों के लिए हूं। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं ताकि जब आप टिप्पणियां पढ़े और आप इस प्रकार की भाषा पढ़े तो आपको पता चले कि शब्दों का क्या मतलब है और लेखक कहां से आ रहा है। तो अब तक हमने इस बारे में बात की है कि एक स्तुति स्तोत्र है, एक भजन है और एक याचना स्तोत्र है, और फिर एक तीसरा है और वह है आभारी प्रशंसा, एक टोड़ा। एक कृतज्ञ प्रशंसा सामान्यतः प्रशंसा से भिन्न होती है। सामान्यतः स्तुति में आप ईश्वर के गुणों, उसके अस्तित्व, उसके सार, उसके संचारी गुणों, उसकी शाश्वतता, उसकी सर्वशक्तिमानता के बारे में बात कर रहे हैं, और आप मोटे तौर पर इज़राइल के इतिहास में उनके काम के बारे में बात कर रहे हैं। यह विशिष्ट नहीं है। तो आप इज़राइल के इतिहास का पता लगाएंगे और पूरे इतिहास में मोटे तौर पर भगवान ने अपने लोगों के लिए क्या किया। यही तो प्रशंसा है। कृतज्ञ गीत प्रार्थना का विशिष्ट उत्तर है। यह व्यापक नहीं है। यह ईश्वर है, मैंने आपसे मुक्ति मांगी और आपने मुझे मुक्ति प्रदान की। वह कृतज्ञतापूर्ण प्रशंसा का गीत है। तो वैध रूप से एक विशिष्ट प्रकार कृतज्ञ प्रशंसा के 15 गीत हैं। याचिका के 50 गाने हैं। आपके नोट्स में मैं आपको सभी भजन देता हूं, चाहे वे स्तुति के भजन हो या नहीं। मैंने ऐसा नहीं किया, गुमकेल ने ऐसा किया। मेरा मतलब है, मैंने शायद उसके बारे में बात की होगी। हाँ, यह एक विशाल कृति है और विशिष्ट ट्यूटनिक जर्मन तरीके से हर विवरण, बस यह एक अद्भुत कृति है। मैं नहीं जानता कि उसने सचमुच कभी स्वयं ईश्वर की स्तुति की हो। हो सकता है उसने ऐसा किया हो, लेकिन मुझे इसका कोई मतलब नहीं है। जब वह समाप्त हुआ तो वह परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। क्षमा, जब वह उस बड़े काम से गुजरा तो वह परमेश्वर की स्तुति कर रहा था, यद्यपि वह मर नहीं गया। हाँ, उसने उसे मार डाला। खैर, किसी भी मामले में और इसी तरह, और उन्होंने इसे सामुदायिक विलाप और व्यक्तिगत विलाप के बीच विभाजित किया। क्या पूरा राष्ट्र सूखे या हार के रूप में विलाप कर रहा था, या एक व्यक्तिगत विलाप कर रहा था, जैसे डेविड ने शाउलाइड काल या अबशालोम विद्रोह काल आदि के दुश्मनों के खिलाफ विलाप किया था। तो ये व्यापक श्रेणियां थीं। मैं कह रहा था कि जिस समय मैं गुमकेल पढ़ रहा था, उस समय ऐसा हुआ था कि मैं क्रॉनिकल पढ़ रहा था। एक इतिहास 16:4 ने मुझे वास्तव में चकित कर दिया, जहां दाऊद ने लेवियों को लहसकिया से प्रार्थना करने के लिए, लहादोट को धन्यवाद देने के लिए, लहलेल को स्तुति करने के लिए नियुक्त किया। वहीं क्रॉनिकल ने मुझे बताया कि भजन 3 प्रकार के होते हैं। वहां प्रार्थना करनी थी, वहां प्रशंसा करनी थी और वहां धन्यवाद देना था। यह व्यक्ति और समुदाय के बीच अंतर नहीं करता था। इसका एक कारण यह है कि यह एक बहुत ही विशिष्ट, बहुत ही कठिन अंतर है, क्योंकि आंख वह राजा है जो लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, जो लोगों के लिए चिंतित हैं। और यही कारण है कि जब हम भजन 4 को देखते हैं तो वे कहते हैं, बहुत से लोग वह सब कह रहे हैं जो हमें अच्छा दिखाएगा, जिसे हमने कहा कि बारिश झुकी हुई है। और फिर वह कहता है, जब उनका अन्न और नया दाखमधु बहुत हो जाए तो मेरा हृदय बड़े आनंद से भर दो। इसलिए वह समुदाय और इस निरंतर आगे पीछे की पहचान करता है। तो यह मसीह हमारे लिए, हमारी भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा है, और वह आनंदित होता है जब हमारी आवश्यकताएं उसकी कृपा से पूरी हो जाती हैं। तो फिर हम अंदर आ गए, हम भजनों के बीच में हैं, स्तुति के भजन। तो हम उस एक विशेष रूप को देख रहे हैं और हमारा तरीका स्तोत्र को व्यापक रूप से देखना है। तो हमारे मन में स्तोत्र के प्रति भावना है। फिर मैं एक या दो अलग अलग भजन चुनूंगा और उन पर कुछ गहराई से विचार करूंगा। इसलिए हम व्यापक रूप से संपूर्ण भजनों से जो कुछ सीखा है उसका आनंद ले सकते हैं। तो हम वही हैं। हम अपने नोट्स के पृष्ठ 55 पर हैं और उसके मध्य में हमारे पास भजन है। इस भाग में, इस व्याख्यान में 6 और 7, हमने इसे 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग इन 2 प्रकार के स्तुति स्तोत्र, भजन और धन्यवाद, कृतज्ञ स्तुति के गीत और प्रार्थना के विशिष्ट उत्तर के बीच अंतर करना था। मैंने यह भी टिप्पणी की कि हिब्रू में धन्यवाद के लिए कोई शब्द नहीं है। हमारे पास इससे बेहतर अनुवाद नहीं है। मैंने इसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि थैंक्सगिविंग दिवस पर धन्यवाद ज्ञापन में हम कहते हैं धन्यवाद, वह हिब्रू नहीं है। हिब्रू थैंक्सगिविंग डे पर है, आप खड़े होंगे और कहेंगे, मैं आपको बताऊं कि प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, और आप बहुत विशिष्ट बने। तुम यह नहीं कहते, धन्यवाद भगवान। आप बताएं कि यह सार्वजनिक है। मैं सबको बताऊं कि भगवान ने मेरे लिए क्या किया है। और यह सार्वजनिक प्रशंसा है, यह आभारी प्रशंसा है। तो यह आपके और भगवान के बीच कोई निजी आदान प्रदान नहीं है, यह एक प्रशंसा है, क्योंकि थैंक्स गिविंग शब्द टोडा है जिसका अर्थ है कबूल करना। इसका उपयोग पाप स्वीकार करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यह प्रशंसा का एक बयान भी है कि मैं स्वीकार करता हूं कि भगवान ने मेरे लिए यह किया और यह कोई दुर्घटना नहीं है। तो आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार करें कि उसने आपके लिए क्या किया है। कृतज्ञ प्रशंसा से हमारा यही तात्पर्य है। पृष्ठ के शीर्ष पर मैं दो प्रकार के भजनों पर यही अंतर बता रहा हूं। तब हमारी सामान्य प्रशंसा होती है। हम भजनों से वैसे ही निपटते हैं जैसे हमने इस पर चर्चा की है। फिर अंत में पृष्ठ 72 पर मेरे पास आभारी प्रशंसा के गीतों पर एक छोटा सा अनुभाग है। तो मैं यह नोट करके शुरू करता हूं कि यह दो प्रकार के होते हैं। फिर मैं एक प्रकार विकसित करता हूं और फिर मैं लघु प्रकार विकसित करता हूं। तो इस तरह व्याख्यान प्रस्तुत किया जाता है। अब भजनों पर नजर डालते हैं। यहां मेरी रूपरेखा थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन भजनों के बारे में मैं 5 बिंदु बनाना चाहता हूं। पहला भजन का रूपांकन है। दूसरा वह कलाकार है जो वास्तव में भजन प्रस्तुत करता है और गाता है। वह यहां थोड़ा नीचे है। मुझे वह पृष्ठ नीचे रख देना चाहिए था जहां वह है। हां ठीक है, पृष्ठ 55 और मैं अगला खोजने का प्रयास कर रहा हूं। प्रदर्शन से। हां कहां? 54-64। हां ठीक है, यही प्रदर्शन है। 64 हां यही प्रदर्शन है। रूपरेखा थोड़ी गड़बड़ हो गई है, लेकिन भजनों के बारे में मैं 5 बिंदु बनाना चाहता हूं। फिर सी धर्मशास्त्र है कि वे ईश्वर के बारे में क्या स्तुति करते हैं। प्रशंसा की सामग्री क्या है? स्तुति का धर्मशास्त्र। फिर मैं स्तुति स्तोत्र के एक उपप्रकार के बारे में बात करता हूं। वह सियोन के गीत हैं, जो पृष्ठ 71 पर है, जहां आप जश्न मनाते हैं, जहां भगवान रहते हैं, सियोन के गीत। फिर अंत में मैंने संक्षेप में उल्लेख किया, लेकिन इसे विकसित नहीं किया। मैं सिर्फ ध्यान आकर्षित करता हूं, तथाकथित सिंहासनारोहण स्तोत्र हैं। मुझे लगता है कि यह एक मिथ्या नाम है। यह कुछ हद तक गलत नाम है, लेकिन यह साहित्य में है और हर कोई सिंहासनारोहण स्तोत्र के बारे में बात करेगा। सत्यनिष्ठा और विद्वता और पढ़ने से जुड़ा कोई भी व्यक्ति सिंहासनारूढ़ भजन सियोन के गीत के बारे में जरूर पढ़ेगा। इसलिए यह उचित है कि मदरसा स्तर पर छात्र को साहित्य की ओर उन्मुख करना, छात्र को साहित्य से परिचित कराना, अवधारणाओं से परिचित कराना मेरी जिम्मेदारी है। चूंकि बहुत सारा साहित्य अकादमिक साहित्य गैर इवेंजेलिकल पूर्व धारणाओं से लिखा गया है, इसलिए एक इंजील प्रोफेसर के रूप में मैं हर समय बातचीत कर रहा हूं और मूल्यांकन कर रहा हूं, जो अच्छा है और जो मुझे लगता है कि बुरा है, और उसका मूल्यांकन कर रहा हूं। तो इसके माध्यम से छात्र का मार्गदर्शन करें। तो हम यही कर रहे हैं। ठीक है, भजन के अंतर्गत पृष्ठ 55 पर वापस जाते हुए मैं इस चर्चा से शुरुआत करता हूं कि भजन के उद्देश्य क्या हैं। वहां 3 हैं। वे प्रशंसा का आह्वान है, परिचय है, और फिर प्रशंसा का कारण भी है। दिलचस्प बात यह है कि मैं इसके बारे में यह सोचना पसंद करता हूं कि प्रशंसा का आह्वान वह माचिस है जो आग जलाती है, प्रशंसा का कारण वह ईंधन है जो प्रज्वलित होता है। आप किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? तो एक है मैच, पुकार वह माचिस है जो आग जलाती है। तब आपके पास ईंधन है जो अग्नि ही है। यही आह्वान है। फिर यह अक्सर हलेलुयाह के साथ समाप्त होता है, प्रभु की स्तुति करो। आप प्रशंसा के लिए नए सिरे से कॉल पर वापस जाते हैं। तो वे तीन प्रकार हैं जो हमें निष्कर्ष मिलते हैं। जैसा कि मैंने इसे पृष्ठ 56 पर सबसे छोटे भजन द्वारा चित्रित किया है, वहां आपका आह्वान है, आप सभी राष्ट्रों प्रभु की स्तुति करो, उसकी स्तुति करो तुम सभी लोगों। और अब तुम्हारे पास इसका कारण है, हमारे प्रति उसका प्रेम महान है और प्रभु की सच्चाई सदैव बनी रहेगी। और फिर आपके पास हलेलुयाह है, प्रभु की स्तुति करो। यह उतना ही छोटा है जितना आप पा सकते हैं। गहन, बिल्कुल गहन। आप बुतपरस्त राष्ट्रों से प्रभु की स्तुति करने के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। उस बारे में सोचना, क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? आप चाहते हैं कि दुनिया, राष्ट्र इसराइल के ईश्वर की प्रशंसा करें कि उसने उनके लिए क्या किया और वह उनके लिए क्या मायने रखता है। मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ी खोजबीन की जरूरत है और हम इसी पर गौर करेंगे जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। फिर कल हमने संपूर्ण भजन 33 को देखा, जो स्तुति का एक अधिक सामान्य और व्यापक भजन है। फिर हम वापस आ गए और हम पृष्ठ 57 पर हैं। अब मैं उन रूपांकनों को विकसित करना शुरू करता हूँ। इसलिए मैं मूल भाव प्रशंसा के आह्वान के परिचय पर चर्चा करके शुरुआत करता हूँ। फिर मैं पृष्ठ 62 प्रशंसा का कारण और फिर पृष्ठ 64 पर निष्कर्ष विकसित करने जा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ काफी कुछ पृष्ठ हैं, लगभग 5 पृष्ठ जहाँ मैं जा रहा हूँ, हम कहाँ हैं, परिचय और प्रशंसा के आह्वान पर विचार करना। और इसलिए मैं प्रशंसा के आह्वान के बारे में कई बिंदु बता रहा हूँ जो मुझे विचार करने योग्य लगते हैं। और मैं वास्तव में इसे गंकेल से बहुत दूर ले जा रहा हूँ, लेकिन 3 हैं। सबसे पहले तथ्य यह है कि यह एक अनिवार्य मनोच्छा है। आपको बुलाया जा रहा है और अनिवार्य मनोच्छा में प्रभु की स्तुति करने के लिए कहा जा रहा है। और यह सोचने लायक है। गंकेल ने अपनी चालाकी जर्मनिक तरीके से इसे दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति और पहले व्यक्ति में विभाजित किया है। और इसलिए आपके पास है, आप भगवान की स्तुति करते हैं या लोगों को भगवान की स्तुति करने देते हैं, या मैं भगवान की स्तुति करूंगा। मुझे प्रभु की स्तुति करने दो। वह बहुत चालाक है। लेकिन मुद्दा यह है कि यह अनिवार्य मूड में है। और मैंने कल सी एस लुईस के सामने यह प्रश्न उठाया था कि क्या ईश्वर आत्ममुग्ध है? क्या भगवान को होना जरूरी है? क्या वह असुरक्षित है? परमेश्वर हमें मेरी स्तुति करने के लिए क्यों कह रहा है? हमें बुरा लगेगा अगर कभी कोई कहे, मेरी तारीफ करो, देखो मैं कितना महान हूं। मेरा मतलब है, हमें ये खेल एथलीट पसंद नहीं हैं जो नाचते हुए मेरी प्रशंसा करते हैं और मुझे देखते हैं। यहां मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ गड़बड़ है। तो परमेश्वर क्यों कह रहा है, मेरी स्तुति करो, मेरी स्तुति करो? और यही सवाल सीएस लुईस उठा रहे हैं। और सीएस लुईस इसे यह कहकर संबोधित करते हैं, कुछ चीजें हैं जो सराहनीय हैं और उनकी प्रशंसा न करना गलत है। इसलिए वह इसकी तुलना एक महान पेंटिंग से करते हैं। वह कहते हैं, जब कोई पेंटिंग सराहनीय है तो हमारा क्या मतलब है? हमारा तात्पर्य यह है कि यह इतना महान है कि प्रशंसा के योग्य है। और यदि आप इसकी प्रशंसा नहीं करते हैं तो आपके साथ कुछ गड़बड़ है, और यदि आप इसे नहीं देखते हैं तो आप मर चुके हैं। इसलिए यह इस पर निर्भर करता है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो विद्रोही है, और आप कहते हैं, प्रभु की स्तुति करो। यह एक ऐसी चीज है जो चेतावनी, चेतावनी और सुधार है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि तुम प्रभु की स्तुति नहीं कर रहे हो। खैर, मुझे लगता है कि अक्सर यह एक चीयरलीडर की तरह होता है जो आग जला रहा है और पूरी मंडली को इसमें शामिल होने में मदद कर रहा है। और जिस अभिव्यक्ति से मुझे नफरत है वह यह है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा ही गाएं। खैर, मुझे उस अभिव्यक्ति से नफरत है। गाओ क्योंकि तुम्हारा यही मतलब है, वगैरह वगैरह। लेकिन हम सभी उसके अच्छे इरादे को समझते हैं। तो दूसरे शब्दों में, और फिर हम यहीं समाप्त हो गए। वह हमारे पास पृष्ठ 58 पर था। और इसलिए उन्होंने भगवान के बारे में कहा, यहां प्रशंसा की जाने वाली वस्तु है। और उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति की तुलना की जो उस वाक्य के अंत में इसे नहीं देखता है, उन लोगों का अधूरा और अपंग जीवन जो स्वर बधिर हैं, जिन्होंने कभी कोई आवाज नहीं सुनी, जिन्होंने कभी प्यार नहीं किया, जिन्होंने कभी सच्ची दोस्ती नहीं देखी, जिन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की अच्छी किताब, उनके गालों पर सुबह की हवा का एहसास कभी नहीं हुआ। वे उन लोगों की धुंधली छवियां हैं जिन्होंने कभी भी ईश्वर को उसके संपूर्ण वैभव में नहीं देखा है और उसकी प्रशंसा और प्रशंसा कर सकते हैं। वे स्वरबधिर हैं। वे महान कला के प्रति अंधे हैं। तो मुझे लगता है कि मैं पहले धर्मशास्त्र से थोड़ा ऊब चुका था, लेकिन मेरे धर्मनिरपेक्ष युग में जहां भगवान की बदनामी होती है और भगवान की उपेक्षा होती है, मुझे भगवान के गुणों के बारे में सोचना पूरी तरह से ताजा और स्वस्थ लगता है। और यह गायब है, बस गायब है। इसलिए इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें कि हम चर्च आ सकते हैं और उसकी स्तुति कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम उसकी स्तुति कर सकते हैं। और हम भजन 95 में पढ़ते हैं कि हमें हर परिस्थिति में उसकी स्तुति करनी है। और वह कहता है, आओ और यहोवा की स्तुति करो। यह पृष्ठ 58 पर है, आओ और प्रभु की स्तुति करो। और फिर श्लोक 6 में उन्होंने कहा, अपने दिलों को कठोर मत करो जैसा तुमने मेरिवा में किया था, जैसा कि तुमने उस दिन जंगल में मस्सा में किया था जब उनके पास पानी की कमी थी और उन्होंने भगवान की स्तुति करने के बजाय शिकायत की थी। तो शिकायत करने के बजाय, और उसके लिए एक जगह है, लेकिन आइए यह सुनिश्चित करें कि हम शिकायत से आगे बढ़े और हमें अपनी भावनाओं को ईमानदार अभिव्यक्ति देनी चाहिए। लेकिन आइए उससे आगे बढ़े और प्रभु की स्तुति करें। ठीक है। पृष्ठ 59 एक अन्य विचार उत्साह की मनोच्छा है। यह गुनगुना नहीं है। भगवान को हम या तो गर्म पसंद हैं, आप या तो गर्म या ठंडे रहेंगे। वह चाहता है कि हम मेलानी की तरह बने। मुझे लगता है कि मेलानी वह सब वहां है। तो वह गुनगुनी नहीं है, वह सब वहां है। और भगवान यही चाहता है। वह एक उत्कट आत्मा चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ वहां मौजूद हो। तो यह आमतौर पर गुंकेल है जो हर चीज का विश्लेषण कर रहा है। प्रदर्शन का स्वरूप इसे दर्शाता है। यह संगीत गायन, गीत संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है और संगीत इसके साथ होता है और हमारे उत्साह को व्यक्त करता है। इसे मूवमेंट के साथ प्रदर्शित किया जाता है। वे उसके और उसके द्वारों से पहले प्रवेश करते हैं, वास्तव में जुलूस होते हैं। वे ताली बजाते हैं। वे प्रभु की स्तुति करते हैं। वे आपके हाथ ऊपर उठाते हैं। अच्छा, यह एक उद्धरण है, हे यहोवा के सब सेवकों जो रात को यहोवा के भवन में सेवा करते हो, यहोवा की स्तुति करो, अर्थात यहोवा के सेवक लेवीय याजक हैं। इसलिए वे पूरी रात और पूरे दिन और रात खड़े रहते हैं। वे पवित्र स्थान में हाथ उठाकर यहोवा की स्तुति कर रहे हैं और यहोवा की स्तुति कर रहे हैं। वह उन्हें औपचारिकता के विरुद्ध प्रोत्साहित कर रहा है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए इसे उत्साह के साथ होना चाहिए। तो मुख्य शब्द जोसी तीन हैं, मुख्य शब्द जो भजनों में उनकी स्थिति के माध्यम से उच्चारण किए जाते हैं, मनोदशा को निर्दिष्ट करते हैं। यह आनंदित है, गौरवान्वित है, प्रसन्न है। और वास्तव में अक्सर भजन का उद्देश्य ही ईश्वर को प्रसन्न करना और उसका जश्न मनाना होता है। अब यह होता था, इसे बलि के साथ चढ़ाया जाता था। स्तुति एक बलिदान, एक पशु बलि के साथ बढ़ी। लेकिन नए नियम के आगमन के साथ, जो मंदिर के विनाश और मसीह के बलिदान से पहले था, अब लेखन में स्तुति के बलिदान की पेशकश करें। इसलिए जब हम अपनी स्तुति करते हैं तो यह भगवान को चढ़ाए जाने वाले बलिदान की तरह है। यह भगवान के लिए एक मीठा स्वाद है, लेकिन जानवर के बिना। इसलिए जानवर के बिना हम आज भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं, जब हम प्रार्थना में भगवान को अपनी स्तुति अर्पित करते हैं। यह परमेश्वर के लिए एक मधुर स्वाद है। यह हमारी भलाई के लिए है। हम व्यक्त कर रहे हैं कि हम वास्तविकता के प्रति जीवित हैं। हम किसी मृत भगवान की सेवा नहीं कर रहे हैं, और इसलिए हम मरे नहीं हैं। यदि ईश्वर जीवित है और हम उसकी स्तुति करते हैं, तो हम वास्तविकता के प्रति पूरी तरह से जीवित रहेंगे। हम इसके बीच में लोगों को देखेंगे। और हलेलुया वह भजन शुरू और समाप्त होता है जो उत्साह को कुछ अभिव्यक्ति देता है। तो प्रशंसा के इस आह्वान पर विचार करें। पहली बात ध्यान देने वाली है, इसे करना अनिवार्य है और इसे उत्साह के साथ करना है। तीसरा सवाल यह है कि ऐसा कौन करता है, इसे कौन करता है? यह गायकों और मंडली द्वारा किया जाता है। इसलिए प्राचीन इज़राइल में उनके पास गायक मंडलियां थीं। ये लेविटिकल गिल्ड थे। तो आपके पास कोरह के पुत्रों द्वारा भजन, कोरहाइट भजन, आस्फिक भजन हैं। ये इज़राइल में अलग अलग गिल्ड थे, लेविटिकल गिल्ड। कुछ गायक थे, कुछ मंदिर के द्वारपाल थे। कि मंदिर में उनके अलग अलग कार्य थे, इसलिए कोरहवासी भी द्वारपाल थे। और इसलिए वे मंदिर के गायक भी थे, जो कि एक उच्च सम्मान की बात थी। तो और यह एक पूरी मंडली थी। और प्रतीत होता है कि जब यह कहता है प्रभु को धन्यवाद दो, तो यह कौन कह रहा है? और हम यह मान सकते हैं कि वहां किसी प्रकार का कोई गायन मंडली निर्देशक था। तो गुंकेल मरियम की ओर ध्यान आकर्षित करता है। मरियम भविष्यवक्ता हारून उसकी बहन ने अपने हाथ में डफली ले ली और सभी स्त्रियां डफली लेकर नाचती हुई उसके पीछे हो ली। तब मरियम ने उनके लिए गाना गाया और वे सभी मरियम के नेतृत्व में गा रहे थे, जो स्तुति के इस नृत्य में उनका नेतृत्व कर रही थी। इन गायक मंडलियों और मंडलियों का उल्लेख बार बार किया जाता है। आप देख सकते हैं कि गुंकेल ने इसका विश्लेषण किया है। आपके पास सभी श्लोक हैं। उसके पास कंप्यूटर नहीं था। उन्होंने बस हर चीज का विश्लेषण किया। तो मैंने अभी उनकी पुस्तक को स्कैन किया है और आपके पास यही है, इसे थोड़ा संशोधित किया है। जो लोग उसकी स्तुति करते हैं, उन्हें नैतिक सम्मान के सभी प्रकार के नाम मिलते हैं। वह प्रशंसा नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि व्यभिचारी जीवन जीने वाले लोग अमेजिंग ग्रेस गाएं। यह भगवान को प्रसन्न नहीं करता। वह इससे नफरत करता है। आपके पास ऐसे लोग हैं जो ठीक से नहीं जी रहे हैं और वे सुसमाचार गीत गाते हैं और वे साहित्यिक शैली के रूप में यीशु की प्रशंसा करते हैं। ये लोग नशीली दवाओं का सेवन करते हैं और युवाओं को नैतिक रूप से भटका रहे हैं। वे प्रशंसा के गीत गा रहे हैं और चौकड़ी प्रशंसा के गीत गा रही है। भगवान ऐसा नहीं चाहते। वह इससे नफरत करता है। यह उसके लिए घृणित है। इसका मतलब यही है। तो आपने पढ़ा, मैं धर्मप्रायण हूं। उन्हें धर्मी, सीधे, सच्चे दिल वाले, परमेश्वर से डरने वालों, उसके नाम से प्यार करने वालों, उसके उद्धार से प्यार करने वालों, उसकी तलाश करने वालों और खुद को उसमें छिपाने वालों की प्रशंसा करनी चाहिए। वे सभी विशेषण भाव हैं, भगवान की स्तुति करने वालों के संशोधक हैं। तो इससे आपको कुछ जानकारी मिलती है कि सुसमाचार संगीत में हम जो सुन रहे हैं उसका मूल्यांकन कैसे करें। मुझे यकीन है कि बहुत अद्भुत लोग हैं, लेकिन वे सभी नहीं हैं। हमें इसका मूल्यांकन करना चाहिए। मुझे परेशानी होती है जब हम प्रशंसा को मनोरंजन बनाते हैं और वह नाटकीय होता है। भजन 115 है, प्रभु हमारी नहीं, हमारी नहीं, परंतु तेरे ही नाम की महिमा हो। फिर भी हम इन विभिन्न गायकों का जश्न मनाते हैं। हम इन अलग अलग गायकों की तारीफ करते हैं। मुझे इससे दिक्कत है। हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, बल्कि आपके नाम के लिए। तुम भजनहार की कभी प्रशंसा नहीं करते। वह कभी प्रशंसा नहीं मांगता। वह चाहता है कि परमेश्वर को सारी प्रशंसा मिले। इसलिए मुझे लगता है कि इनमें से कुछ विचार सार्थक हैं जो गुंकेल हमें दे रहे थे। वहां मैंने तुम्हें वह भजन 50 दिया जो आसाप का भजन है। यह एक भविष्यवाणी शब्द है और यह प्रशंसा और प्रशंसा के बलिदानों का आह्वान कर रहा है। परमेश्वर यह चाहता है, ऐसा नहीं कि उसे इसकी आवश्यकता है, परंतु यह उचित है, यह उपयुक्त है, यह सही है। लेकिन फिर कहने के बाद, उदाहरण के लिए 14 को, हां बलिदान भगवान को धन्यवाद प्रसाद, अर्थात उसने आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया है। आप एक विशिष्ट बात देख सकते हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं को सर्वोच्च स्तर तक पूरा कर सकते हैं कि जब आप संकट में थे तो आपको पता था कि उचित प्रतिक्रिया यह होगी कि आप मंदिर जाएंगे और आप सभी को बताएंगे कि भगवान ने आपके लिए क्या किया है। आपके पास एक पूर्ण बलिदान होगा जिसमें हर कोई या आपके दोस्त और समुदाय आपके साथ भोजन करेंगे और भगवान को धन्यवाद देंगे। संकट के दिन वे मुझे बुलाते हैं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तुम मेरा आदर करोगे। परंतु दुष्ट मनुष्य से परमेश्वर कहता है, तुझे मेरी विधियां सुनाने का क्या अधिकार है? मैं अपनी वाचा तेरे होठों पर रखूंगा। तुम्हें शिक्षा से नफरत है, मेरे शब्दों को अपने पीछे छोड़ दो। आप एक विशिष्ट बात देख सकते हैं, अपनी प्रतिज्ञाओं को सर्वोच्च स्तर तक पूरा कर सकते हैं कि जब आप संकट में थे तो आपको पता था कि उचित प्रतिक्रिया यह हो। जब तुम किसी चोर को देखते हो तो उसके साथ हो लेते हो, तू अपना भाग व्यभिचारियों के हाथ में डाल देता है। तू अपना मुंह बुराई के लिए और अपनी जीभ का उपयोग छल के लिए करता है। तुम बैठकर अपने भाई के विरुद्ध गवाही देते हो और अपनी ही मां के बेटे की निंदा करते हो। जब तूने ये काम किए और मैं चुप रहा तो तूने समझा कि मैं बिल्कुल तेरे ही समान हूं, परंतु अब मैं तुझ पर दोष लगाता हूं और अपना दोष तेरे सामने रखता हूं। हे परमेश्वर को भूलने वालों, इस पर विचार करो, नहीं तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा और कोई छुड़ाने वाला न होगा। जो धन्यवाद बलि चढ़ाते हैं वे मेरा आदर करते हैं और निर्दोषों को मैं अपना उद्धार दिखाऊंगा। भगवान की कृपा से अलग कौन रह सकता है? मैंने कितनी बार अपने मुंह से पाप किया है और गलत बातें कही हैं। हम सबके पास है, फिर भी भगवान की कृपा हमारे पापों से अधिक है। आइए हम हिम्मत रखें और प्रोत्साहित हों। वह चाहता है कि सारी दुनिया गाए, यही तो दिलचस्प है। आप देखिए, वह चाहता है कि हर कोई उसकी प्रशंसा करे। सारी दुनिया, यहां सारा डेटा, सारी दुनिया है। यह पेज 61 पर है। आपके पास सारी दुनिया है। वह आपको वहां सभी श्लोक देता है। पृथ्वी, अनेक द्वीप, पृथ्वी के छोर, विश्व के सभी निवासी, सभी प्राणी, सांस लेने वाले सभी प्राणी, राष्ट्रों के परिवार, सभी लोग और राष्ट्र, पृथ्वी के राज्य, सभी राजा और राजकुमार, यहां तक कि मैं के दुश्मन हूं। वह हर किसी को चाहता है। तो दूसरे शब्दों में यह भाव कि अन्य जातियों को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए कोई मामूली भाव नहीं है। आप इन सभी छंदों को देख सकते हैं जो इसका आह्वान कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है? खैर, मुझे लगता है कि जो चल रहा है वह उत्पत्ति 12.13 पर वापस जा रहा है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने आप को अपनी भूमि से, अपने देश से और अपने लोगों से अलग कर लो, जिसे करना इब्राहिम के लिए बहुत कठिन था। अपने बुतपरस्त परिवार के साथ संबंध तोड़ना और केवल परमेश्वर पर विश्वास करके बाहर निकलना, और वह ऐसा करने में बहुत धीमा था। चूंकि बहुत से लोग कई संस्कृतियों में हैं, इसलिए वे बाहर निकलने और खुद को अपनी संस्कृति, अपनी परंपराओं और अपने इतिहास से अलग करने में धीमे होते हैं। लेकिन ईसाई बनने के लिए आपको बाहर निकलना होगा। इसके अलावा ईसाइयों के लिए बपतिस्मा है, जो बपतिस्मा लेने पर आपको अलग कर देता है, और पूरी दुनिया जानती है कि मैंने यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ पहचान की है। हम बपतिस्मा से नहीं बचाए गए हैं, लेकिन यह एक बहुत ही आवश्यक सार्वजनिक उद्घोषणा है कि मैं उस व्यक्ति से संबंधित हूँ जो मेरे लिए मर गया और मृतकों में से फिर से जी उठा। मैं अपने पुराने जीवन के प्रति मर चुका हूँ और मैं अपने जीवन के नए तरीके के प्रति बड़ा हुआ हूँ। इसलिए ईसाई के रूप में हमारी पहचान में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जहाँ हम खुद को अलग करते हैं और एक नए समुदाय में शामिल होते हैं। वह एक निर्णायक क्षण है। यहूदी धर्म में जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते तब तक आप ईसाई नहीं हैं। चीनी संस्कृति में आप जापानी नहीं हैं। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लेते तब तक आप ईसाई नहीं हैं। जब आप बपतिस्मा ले लेंगे तभी वे आपको अस्वीकार कर देंगे। वह विशिष्ट चिन्ह है। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा। अपने परिवार और समुदाय को छोड़े। क्या मैंने सचमुच अपना परिवार छोड़ दिया? खैर, मैं आपको बताऊंगा, क्या आपने सार्वजनिक रूप से बपतिस्मा लिया था? मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अपना परिवार छोड़ाया नहीं। आपने मसीह के साथ अपनी नई पहचान बनाई। फिर वह अलग होकर कहता है, फिर वह कहता है, मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याद है मैंने आशीर्वाद के बारे में क्या कहा था? मैं तुम्हें जीवन को पुनः उत्पन्न करने की क्षमता से भर दूंगा। परिणाम स्वरूप आप विजयी होंगे। आशीर्वाद देने के दो विचार, मैं तुझे फलवंत और बढ़ाऊंगा और तू प्रियवी को अपने वश में कर लेगा। तो दो विचार हैं, गुना करना और विजयी होना। जैसा कि मैंने कहा, जब आप नए नियम पर आते हैं और यीशु आशीर्वाद देते हैं और अपने शिष्यों पर सांस लेते हैं तो वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं। वह उन्हें शारीरिक रूप से प्रजनन करने का आशीर्वाद नहीं दे रहा है। उनके कभी बच्चे नहीं थे। उन्होंने कभी शादी नहीं की। मान लिया था। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने अपना परिवार छोड़ाया नहीं। आपने मसीह के साथ अपनी नई पहचान बनाई। वह उन्हें आध्यात्मिक रूप से पुनरुत्पादन करने का आशीर्वाद दे रहा है। तो चर्च बढ़ेगा और विजयी होगा। इसलिए हमें अपने ऊपर उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि हम आध्यात्मिक रूप से फल के रूप में पुनः उत्पन्न हो सकें। हम ईश्वर के राज्य की स्थापना करने में विजयी हो सकते हैं, जो प्रेम, अनुग्रह, सत्य और उन सभी का राज्य है जो सुंदर और अद्भुत हैं। खैर, यही तो उसने अलग रखा है। भगवान उन्हें आशीर्वाद देंगे। तब उसने इब्राहीम से कहा, और तू आशीष ठहरेगा। दूसरे शब्दों में, आप अन्य लोगों को फलदायी और विजयी बनाने जा रहे हैं। आप आशीर्वाद बनेंगे। अब यह कैसे होता है? परमेश्वर कहते हैं, क्या होने वाला है? यदि वे तुझे शाप दें, तो मैं भी उन्हें शाप दूंगा। यहां हिब्रू में शाप के लिए दो अलग अलग शब्द हैं। एक यह है कि यदि वे तुम्हें शाप देते हैं, तो हिब्रू शब्द क्लाल है। इसका मतलब है, क्लाल का अर्थ है हल्का होना। यदि वे आपको महत्वहीन एक अन्य इंसान, एक अन्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं, तो श्राप शब्द का यही अर्थ है। वे आपको बदनाम करते हैं और आप किसी और से अलग नहीं हैं। ठीक यही वे यीशु के साथ करना चाहते हैं। वे ऐतिहासिक यीशु को पाना चाहते हैं। वे इस बात से बचना चाहते थे कि वह सिर्फ एक और इंसान है। हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन वह सिर्फ एक और इंसान है। वे यीशु को कोस रहे हैं क्योंकि वे नहीं पहचान रहे हैं कि यीशु वास्तव में कौन है। वे बस उसके साथ एक अन्य इंसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यही अभिशाप है। यह क्लाल है, व्यक्ति के साथ हल्के ढंग से व्यवहार करना। भगवान ने कहा, जो कोई ऐसा करेगा, मैं शाप दूंगा। अब वह आ रहा है, वह एक अलग शब्द है। यह आशीर्वाद के विपरीत है। उनका अंत मृत्यु में होने वाला है, और वे बाज होने वाले हैं, और वे विजयी नहीं होने वाले हैं। आज मैं अमेरिका में यही घटित होते हुए देख रहा हूं। हमने यीशु के साथ उदासीनता से व्यवहार किया है। नतीजा यह है कि हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, चर्च उस तरह से पुनरुत्पादन नहीं कर रहा है, जिस तरह से उसे स्वयं को पुनरुत्पादित करना चाहिए। यह उतना विजयी नहीं है, जितना होना चाहिए। परंतु किसी भी हालत में, जो कोई तुम्हारे साथ हल्का, तुच्छ व्यवहार करेगा, मैं शाप दूंगा। लेकिन जो कोई आपको आशीर्वाद देता है, यानी इस मामले में, वह आपको आशीर्वाद के स्रोत के रूप में पहचानता है। इसलिए जो कोई तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, अर्थात चाहते हैं कि तुम्हारी उन्नति हो। जो कोई चाहता है कि तू बढ़े और जयवंत हो, मैं उसे आशीष दूंगा और फलवंत करूंगा, बढ़ूंगा और जय जयकार करूंगा। ऐसा ही होता है। तो भजनहार क्या कह रहा है? अन्य जाति हमें आशीर्वाद दें और आप भी धन्य होंगे। यह इसी बारे में है। वास्तव में सभी राष्ट्रों को जानना चाहिए कि मैं हूँ। यह महान भजन 100 है। जान लें कि मैं भगवान हूँ, वह स्वयं भगवान है। और यह जान लो कि हम उसके लोग हैं। हम उसके हैं, हम उसकी चरागाह की भेड़े हैं। इसे स्वीकार करें और उसके आशीर्वाद में प्रवेश करें और प्रभु की स्तुति करें। हम यहाँ इसी बारे में बात कर रहे हैं। यह वास्तव में एक मिशनरी भजन पुस्तक है, जो मध्यस्थ राज्य की मध्यस्थता के माध्यम से राष्ट्रों को मुक्ति दिलाने का प्रयास कर रही है। अब आज इसका एहसास अविश्वासी जायोनीवाद और यहूदियों में नहीं है। ऐसा नहीं है। उन्होंने यीशु को ना कह दिया है। उन्होंने उसके साथ तुच्छ व्यवहार किया है। उन्होंने खुद को काट लिया है। मेरा मानना है कि अगर मैं रोमियो 11 पढ़ूं तो वे वापस आ जाएंगे, लेकिन वर्तमान में यह परमेश्वर का राज्य नहीं है। इब्राहीम का वंश कौन है? आशीर्वाद देने वाला कौन है? यह यीशु है। वह इब्राहीम का पुत्र है। वह वही है जो परिपूर्ण है। इसलिए आज नई व्यवस्था में हमारे लिए इसका अर्थ प्रभु यीशु मसीह को आशीर्वाद देना है। जानिए वह कौन है। वह मोक्ष देने वाला है और उसके अलावा कोई मोक्ष नहीं है। इसलिए उसे अपनाएं, उसे आशीर्वाद दें कि वह बढ़े और विजयी हो, और बदले में आप बढ़ेंगे और विजयी होंगे। तो आज मसीह कौन है? खैर, यह हम हैं, यह आप और मैं हैं, ईश्वर की अद्भुत कृपा। मुझे लगता है कि दो छंदों को देखना सार्थक है जो यह समझने में मदद करते हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। हम भगवान के लोग हैं, उसने हमें चुना, वह हमारा चरवाहा है। तो गलातियों का अध्याय 3:1 होगा। मैं आपको गलातियों 3 और अध्याय के अंत को देखने के लिए कहूंगा। अपना रास्ता ढूंढने के लिए अपने पास एक बाइबल रखना जिस पर कुछ किताबों के शीर्षक हों, अच्छा है। अब अध्याय 3:26। आथक मसीह यीशु में आप सभी विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाते हैं। और वह गलातिया की कलीसिया से तब तक बात कर रहा है जब तक वे सारी कलीसिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते, क्योंकि तुम सब ने जो मसीह में बपतिस्मा लिया है अपने आप को मसीह का वस्त्र पहन लिया है। न कोई यहूदी है, न अन्य जाति, न कोई दास है, न स्वतंत्र, न कोई नरनारी है, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। यदि तुम मसीह के हो तो प्रतिज्ञा के अनुसार इब्राहिम के वंश और वारिस हो। आप भगवान के लोग हैं, तुम इब्राहिम के वंश हो। अक्सर हम सोचते हैं कि यह यहूदी हैं जो शारीरिक रूप से इब्राहिम के बीज हैं, लेकिन उन्हें काट दिया जाएगा। अब्राहम का बीज, अब्राहम का आध्यात्मिक बीज आप और मैं हैं। जो कोई तुम्हें यीशु का प्रतिनिधित्व करते हुए आशीर्वाद देगा वह धन्य हो जाएगा। और आपने गिदोन के बारे में बात की, वह व्यक्ति जिसने गिदोन बाइबल के माध्यम से आपके पिता को मसीह तक पहुंचाया। तुम देखो, उसने तुम्हें आशीर्वाद दिया और फिर आपने गुना कर दिया। वह आशीर्वाद था। या फिर पवित्र शास्त्र का एक और श्लोक, 1 पत्रस 2:9-10 लें। अब पीटर विदेश में चर्च से बात कर रहा है, जैसे पॉल गैलाटिया गैर यहूदी चर्च में चर्च से बात कर रहा था जब उसने ऐसा कहा था। और उसने कहा, न तो कोई यहूदी है और न यूनानी। यदि आप मसीह में हैं तो आप अपनी जातीय पहचान के अलावा इब्राहिम के वंश हैं। 1 पत्रस 2:9-10 उन लोगों के लिए जो चर्च के बाहर बिखरे हुए हैं, उनमें से अधिकांश अन्य जाति हैं। और फिर वह कहता है 9 उनसे, लेकिन आप एक चुने हुए लोग हैं, एक शाही पुजारी, एक पवित्र राष्ट्र, भगवान की विशेष संपत्ति हैं, ताकि आप उसकी प्रशंसा कर सकें जिसने आपको अंधेरे से अपनी अद्भुत रोशनी में बुलाया है। और इसीलिए तुम्हें परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाया गया है। और जैसे ही तुम परमेश्वर की स्तुति करोगे तब दूसरे तुम्हें आशीर्वाद देंगे और बदले में तुम भी धन्य हो जाओगे। इसलिए सारे संसार को प्रभु की स्तुति करनी चाहिए। हम भजन को बाद में देखेंगे। हे सारी पृथ्वी पर के लोगों, परमेश्वर का जय जयकार करो, उसके नाम की महिमा गाओ। परंतु सारी पृथ्वी पर ध्यान दो, उसके नाम का गुणगान करो, उसकी स्तुति महिमामय करो। भगवान से कहो, तुम्हारे कर्म कितने अद्भुत हैं। आपकी शक्ति इतनी महान है कि आपके शत्रु आपके सामने घुटने टेक देते हैं। सारी पृथ्वी तुम्हें प्रणाम करती है, वे तुम्हारी स्तुति गाते हैं, वे तेरे नाम का गुणगान करते हैं। इसलिए न केवल मंडली और लेवीय गायक मंडली स्तुति गाती है, बल्कि सारी प्रियवी भी उसकी स्तुति गाती है और सारी प्रियवी उसकी स्तुति करती है। जब आप बस देखते हैं, हे भगवान, मेरे भगवान, आप कितने महान हैं। और जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे गरजती हुई गड़गड़ाहट दिखाई देती है और मुझे पहाड़ वगैरह दिखाई देते हैं। वह सब परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। मेरा मतलब है, जब मैं सृष्टि को देखता हूं तो यह समझ से परे है और यह ईश्वर की जबरदस्त प्रशंसा करती है। यह कैसा भगवान है जिसने ऐसी कला बनाई, इसकी सुंदरता। और आप जानते हैं, कंप्यूटर बहुत शानदार है, हम पूरी पृथ्वी पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें आपको लोगों, पहाड़ों, नदियों, झरनों से मिलती हैं। अभी अभी मैंने चित्रों का एक पूरा समूह भेजा है जो मुझे अभिभूत कर देता है, पक्षियों का गायन और छोटे कीड़े, यह बस उनमें से सभी हैं। यह मेरे लिए समझ से बिल्कुल परे हैं। सारी सृष्टि ईश्वर की स्तुति कर रही है, इसे देखने वाले लोग उनकी तारीफ नहीं करते। यह अतुलनीय है, यह विस्मयकारी है। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि आखिरी बात यह है कि मैं स्वयं उसका गुणगान करूंगा। गंकेल लगभग 100 रूप गिनाता है। उन्होंने उन सभी की सूची नहीं दी, एक बार उन्होंने उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया, उसने पूरे 100 नहीं दिए, लेकिन यहां प्रसिद्ध है। प्रभु की स्तुति करो मेरी आत्मा, मेरे सारे अंतरतम उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करो मेरे प्राण, और उसके सभी लाभों को मत भूलो। तथ्य यह है कि हम यहां हैं, उसका लाभ है, हमारा अपना जीवन उसके प्रति समर्पित है, हम अपनी सांसों के लिए उसके ऋणी हैं। यदि वह अपनी सांस रोक लेता है तो हम मर जाते हैं। उसका लाभ सर्वत्र होता है। हम बाहर जाते हैं और शानदार रात्रि भोज और शराब वगैरह लेते हैं। हमारे लिए आपके सभी लाभों के लिए मेरे पूरे मन से प्रभु की स्तुति करो। ठीक है, अब हम मुख्य भाग पर आते हैं जो प्रशंसा का कारण है। यहां मैं तुरंत बिंदु सी पर जाऊंगा, पृष्ठ 64 पर धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र प्रशंसा का कारण क्या है? अब आप इससे पूरा धर्मशास्त्र लिख सकते हैं। मैं जो करना चाहता हूं वह यह है कि इस बिंदु पर मैं आपको केवल स्तोत्र का अनुभव कराने का प्रयास कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से आपको पूरी सामग्री नहीं दे सकता, लेकिन दूसरी ओर मुझे लगता है कि हमें पूरी किताब के लिए एक स्मोरगास बोर्ड की भावना रखनी होगी। और प्रशंसा का ईंधन क्या है, वे किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? तो हम यही कर रहे हैं। हम इसे 10 भागों में विभाजित करने जा रहे हैं। पहला बिंदु जो मैं कह रहा हूं वह स्वयं लोगों का धर्मशास्त्र है। उनका धर्मशास्त्र, जैसा कि मैंने कहा, उनकी प्रशंसा के शब्द हमारे लिए भगवान के शब्द बन जाते हैं। इसलिए हम उनकी प्रशंसा के शब्दों के माध्यम से धर्मशास्त्र सीख रहे हैं। इसलिए उन्होंने मंदिर में स्तुति की। यह प्रेरित धर्म ग्रंथ में लिखा गया है। आज हमने उनकी स्तुति के शब्द पढ़े जो ईश्वर के लिए बहुत ही मधुर बचाव थे। हम उत्साही प्रशंसा के बीच धर्मशास्त्र सीख रहे हैं। धर्मशास्त्र सीखने का क्या अद्भुत तरीका, उचित तरीका है। इसलिए धर्मशास्त्र को शुष्क प्रवचन, वैज्ञानिक विश्लेषण के रूप में रखने के बजाय जो आपको व्यवस्थित विज्ञान में मिलता है, आप प्रशंसा के उत्साह में धर्मशास्त्र सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि यह प्रामाणिक है, इसे ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसा करते हुए कुछ हद तक, मुझे लगता है कि मैं इस अद्भुत सामग्री को केवल इस विश्लेषणात्मक तरीके से संबोधित करके घटिया बना रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि यह देखना उपयोगी है कि ईश्वर के गुण क्या हैं। तो यह पहला बिंदु है। गुंकेल का कहना है कि बेबीलोनियाई और मिस्र के समानांतरों में आपको शायद ही कभी शुद्ध प्रशंसा मिलती है। यह लगभग हमेशा याचिका से जुड़ा होता है, जो आपको यह संदेह देता है कि वास्तव में भगवान की स्तुति करने से अलग होने का एक अंतर्निहित उद्देश्य है। खैर, अब पृष्ठ 65 पर। ऐसा कहने के बाद अब वह भगवान के असंवेदनशील गुणों की एक शक्तिशाली छवि का चित्रण करता है। अब धर्मशास्त्री, मैं उचित रूप से सोचता हूं, ईश्वर के असंप्रेषणीय गुणों और उसके संप्रेषणीय गुणों के बीच अंतर करते हैं। उनकी असंप्रेषणीय विशेषताएं वे विशेषताएं हैं जिन्हें हम साझा नहीं कर सकते। उन्हें यह नहीं बताया जा सकता कि हम उनमें भाग लेते हैं, क्योंकि हमारे गुण समान हैं। संचारी गुण वे हैं जो हम ईश्वर के साथ अपने संबंध के कारण भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अप्राप्य गुण होंगे उसकी अस्मिता, उसकी शाश्वतता, उसकी सर्वज्ञता, सभी चीजों को जानना, सर्वशक्तिमान, जिनमें मैं भाग नहीं ले सकता। मैं प्रशंसा कर सकता हूँ, मैं उनकी प्रशंसा कर सकता हूँ और वे नितांत आवश्यक हैं, लेकिन मैं उसमें भाग नहीं ले सकता, वो मैं नहीं हूँ। दूसरी ओर उनके संचारी गुण उनकी कृपा, दया, सच्चाई और न्याय हैं। वे संचारी गुण हैं जिन्हें मैं ईश्वर के साथ प्रतिबिंबित कर सकता हूँ। तो वह ठीक ही कहता है, धर्मशास्त्री सभी ऐसा करते हैं। वे हमें ईश्वर को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए असंप्रेषणीय और संचारी के बीच अंतर करते हैं। अब संप्रेषणीय विशेषताएं, सबसे पहले उसकी अस्मिता है जो पहले पैराग्राफ में है। एसिटी के अनुसार यह एक लैटिन शब्द है। ए का अर्थ है से और सीटी का अर्थ है स्वयं, अर्थात उसका अस्तित्व स्वयं से है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर व्युत्पन्न नहीं है, भगवान को किसी ने नहीं बनाया, वह किसी भी चीज पर निर्भर नहीं है, सब कुछ उसी पर निर्भर है। तो इसलिए वह खुद से है और कुछ है। मानव मस्तिष्क इसे नहीं समझ सकता। हम जो कुछ भी जानते हैं उसका आरंभ और अंत होता है, लेकिन है भी क्या है? भौतिकवादी कहता है पदार्थ है, शाश्वत है, यह हमेशा से रहा है। बाइबल कहती है कि ईश्वर ने पदार्थ की रचना की। ईश्वर है, आत्मा है, यह दर्शन में एक बुनियादी विभाजन है। वास्तविकता क्या है और क्या है? क्या पदार्थ वास्तविकता है, संपूर्ण वास्तविकता है? मैं तर्क दूंगा कि मामला कानूनों द्वारा शानदार ढंग से व्यवस्थित है, अन्यथा इसका अस्तित्व ही नहीं होता। दूसरे शब्दों में संपूर्ण सृष्टि के भीतर कानून है। कानून बुद्धि को मानते हैं। किसी के पास ऐसा कानून हो सकता है जिसके द्वारा यह सब संचालित होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो कम से कम यह एक तर्कसंगत विचार है कि वास्तव में क्या मायने रखता है कि बाइबल कहती है सब कुछ उस पर निर्भर करता है। मेरे लिए यह भी तर्कसंगत है कि जो कुछ भी है वह जीवन है, यह सच है, यह न्याय है। यीशु जो हैं ईश्वर के पुत्र, जो ईश्वर की छवि हैं और जो यीशु हैं उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, के अलावा बाकी सब कुछ जो यीशु के जैसा नहीं है वह एक भ्रम है, यह नकली है, यह हमें भटकाता है। मसीह वह शब्द है जो हमेशा से था। सबसे अच्छे तरीके से आप यह कह सकते हैं कि यह शुरुआत से ही है, लेकिन मसीह है, त्रित्व है, और यही वास्तविक अस्तित्व है। बाकी सब कुछ क्षणभंगुर है और सब कुछ उस प्रथम कारण पर निर्भर है। हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, भजन यही कह रहे हैं। यह मैं गुंकेल को उद्धृत कर रहा हूं। भजन से उद्धृत करते हुए उसके पास यहोवा है, या मैं कहूंगा कि मैं हूं। आप सदैव भगवान बने रहें। और तुम पहाड़ों के उत्पन्न होने से भी पहले से हो, पृथ्वी और जगत के उत्पन्न होने से भी पहले से हो। आपकी दृष्टि में 1000 वर्ष कल के समान हैं जब वे बीत चुके हैं। फिर तूने समय से पहले ही पृथ्वी की स्थापना की। स्वर्ग तेरे हाथों का बनाया हुआ है। ये तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन तुम बचे रहोगे। वे सभी वस्त्र की तरह गिर जाते हैं। तुम उन्हें वस्त्र की भांति बदलते हो, परंतु तुम वैसे ही बने रहते हो और तुम्हारे वर्षों का कोई अंत नहीं होता। प्रभु आपके कार्य कितने हैं? पृथ्वी तेरे प्राणियों से भर गई है। उन्होंने बात की और ऐसा हो गया। उसने आज्ञा दी और वह वहीं खड़ा हो गया। वे सभी आपका इंतजार करते हैं ताकि आप सही समय पर भोजन पेश करें। आप इसे उन्हें दे दीजिए। वे इसकी कटाई करते हैं। आप अपना हाथ खोलते हैं और वे भलाई से संतुष्ट होते हैं। तुम अपना चेहरा छिपाओ। वे डर जाते हैं। आप उनकी सांस लेते हैं और वे समाप्त हो जाते हैं और वापस अपनी धूल में मिल जाते हैं। सब कुछ भगवान पर निर्भर है, लेकिन यह बहुत बढ़िया है। आप इसे कविता से बेहतर कैसे कह सकते हैं? क्या अद्भुत है। मेरा मतलब है, मैं बहुत धन्य हूं कि भगवान ने मुझे वह करने के लिए बुलाया जो मैं करता हूं। मैं अब तक लिखे गए सबसे महान साहित्य से निपट रहा हूं। यह सौंदर्य की दृष्टि से पूर्णतः संतुष्टिदायक है। यह बौद्धिक रूप से चुनौतीपूर्ण और हमेशा अद्भुत है। यह बाख को सुनने जैसा है। आप उसके फ्यूग्यू और अन्य किसी भी चीज में हमेशा कुछ नया सुनते हैं। इसका कोई अंत नहीं है। यह एक ऐसा आध्यात्मिक आशीर्वाद है। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास इस प्रकार परमेश्वर का वचन है और हमारे पास सत्य है। यह कैसा विशेषाधिकार है। हे मेरे प्राण, प्रभु को आशीर्वाद दे कि हमारे पास ऐसी कक्षा है। हमारे पास इस तरह का बाइबल प्रशिक्षण है ताकि हम इसका प्रसार कर सकें और इसका आनंद उठा सकें और सीख सकें कि कैसे पढ़ना और वचन का पालन करना है। बिल माउंस वगैरह के लिए भगवान को आशीर्वाद दें। ठीक है, उससे निकटतम संबंध यह है कि ईश्वर शाश्वत है। हम पहले ही उसके बारे में बात कर चुके हैं और न केवल शाश्वत के बारे में। आप देखिए, मैंने सभी छंदों पर गुमकेल के परिचय को स्कैन किया है। वह पवित्र और अद्भुत है, पूरी दुनिया में अत्यधिक ऊंचा है, राजसी और शानदार है, माप से परे शक्तिशाली है, कार्यों और कर्मों में महान है, ज्ञान में अनंत है और अतुलनीय रूप से अद्भुत है। अत यह उसकी अप्राप्य बात है। किसी के पास अपनी ताकत नहीं है। उसकी बुद्धि किसी के पास नहीं है। वर्तमान वगैरह पर कोई नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये उनके अवर्णनीय गुण हैं जो हम उनके लोगों की उत्साही प्रशंसा के माध्यम से सीख रहे हैं। मुझे लगता है कि धर्मशास्त्र सीखने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अब उनके संचारी गुणों और उनके प्रमुख संचारी गुणों की शक्तिशाली छवियां दी गई हैं, उदाहरण के लिए निर्गमन 34:6 में। हो सकता है कि आप वहां जाना चाहें क्योंकि ये 5 मूलभूत विशेषताएं हैं। निर्गमन 34:6 यह सुनहरे बछड़े के दृश्य में है और इज़राइल ने घोर पाप किया है। उन्होंने अपने गौरवशाली भगवान को, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, घास खाने वाले बैल की छवि में बदल दिया है। और यदि आपको मेरे कहने पर कोई आपत्ति नहीं है तो बकवास है। आप कल्पना कर सकते हैं, शौच करते हो और उसकी पूजा करते हो। आप संभवतः ऐसा कैसे कर सकते हैं? और आप प्यारे प्रभु यीशु मसीह को कैसे बदल सकते हैं और उन लोगों की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं जो व्यभिचारी धोखेबाज हैं? आप लोगों की जगह कैसे ले सकते हैं और उनकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं और यीशु के स्थान की प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? और आप धन और धन का स्थानापन्न कैसे कर सकते हैं जो इतना अस्थिर है, पिस्सू दूर है, सेक्स अपील है, आपका अपना गौरव है। आप यीशु की तुलना में उसकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं? यह मेरे लिए बहुत अतार्किक और गलत सोच वाला है। लेकिन यहाँ संप्रेषणीय विशेषताएं हैं, निर्गमन अध्याय 34:6। और इसराइल में पृष्ठभूमि से हट गया, उन्होंने सुनहरे बछड़े को समर्पित कर दिया था और इस घास खाने वाले बैल को अपने गौरवशाली भगवान के स्थान पर रख दिया था। और उन्होंने एक प्रकार के जादू में, बुतपरस्त धर्मों में, देवताओं की उर्वरता की नकल की, और इसलिए उन्होंने सेक्स का तांडव किया। क्या आप पहाड़ की तलहटी में इसकी कल्पना कर सकते हैं? जब मूसा आता है तो परमेश्वर क्रोधित होता है, और यदि वह नहीं था तो भगवान के साथ कुछ गड़बड़ है। यदि आप में नैतिक आक्रोश नहीं है तो आपके साथ कुछ गड़बड़ है। जब आप बुराई देखते हैं और उसके प्रति क्रोधित नहीं होते तो आप मर चुके होते हैं, और भगवान का नैतिक आक्रोश है। यदि उसने ऐसा नहीं किया तो वह पूजा के योग्य नहीं है। तो उसके पास नैतिक आक्रोश है और मूसा के पास भी नहीं है, जब तक कि वह पहाड़ से नीचे नहीं आता है और वह इसे देखता है और वह पत्थर की पट्टियों को तोड़ देता है। लेकिन अब क्या होने वाला है? परमेश्वर के लोगों का क्या होगा? क्या यह मरने वाला है? और परमेश्वर कहते हैं, हम तुम्हारे साथ शुरुआत करेंगे मूसा, हम तुम में से इब्राहीम के वंश से एक नई जाति बनाएंगे। मूसा कहते हैं, नहीं, तुमने यह नहीं कहा। और मूसा एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति, क्या सम्मान की बात है अगर पूरी दुनिया वापस मूसा के पास चली जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर भगवान कहते हैं, योजना भी ठीक है, हम आपके सामने भगवान के एक दूत को भेजेंगे, वह तुम्हें रास्ता दिखाएगा। मूसा कहते हैं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हें मेरी उपस्थिति में मेरे साथ रहना होगा। और इसलिए सवाल यह है कि भगवान इन अशुद्ध लोगों के साथ कैसे उपस्थित हो सकते हैं? बेशक उनके पास एक बलिदान प्रणाली है, लेकिन फिर मूसा कहते हैं, मुझे अपनी महिमा दिखाओ। और उसकी महिमा उसकी कृपा है कि पूर्ण ईश्वर अपूर्ण लोगों के साथ रह सकता है। और इसलिए भगवान वह कहते हैं, मुझे एक महिमा दिखाओ। और निर्गमन अध्याय 34:6 में, और प्रभु मूसा के सामने से गुजरते हुए प्रभु प्रभु दयालु और कृपालु ईश्वर, क्रोध करने में धीमे, प्रेम और विश्वास से भरपूर, हजारों के प्रति प्रेम बनाए रखने वाले, दुष्टता विद्रोह को क्षमा करने वाले ईश्वर की घोषणा करते हुए गुजरे। पाप तो आपके पास यह है, उसकी करुणा, उसका अच्छा प्रचुर प्रेम ठीक है। इसमें उनके रचामिम, हन्निम, एरेट शामिल हैं, अपाइम, हेसेड, वे एमेट। मैं कभी कभी हिब्रू में बेहतर सोच सकता हूं, तो मुझे यहां हिब्रू में सोचने दीजिए। पहला शब्द रचमीन है, जिसका अर्थ है उसकी दया। यह वह शब्द है जो गर्भ से निकला है। यह वही माँ है जो एक असहाय बच्चे के प्रति महसूस करती है, जो खुद को खाना नहीं खिला सकता, खुद को साफ नहीं कर सकता, खुद को स्नान नहीं करा सकता, जिसमें पूर्ण करुणा दया है। और हन्निम अनुग्रह वहां दयालुता प्रदान करता है जहां वह अयोग्य है। एरेच अपायन का मतलब है लंबा चेहरा, लोगों के साथ पूरी तरह धैर्यवान, परेशान न होना। मैं हेसेड और एरेच वे एमेट वफादारी और असफल प्रेम के बारे में बात करूंगा, ये उनके गुण हैं। और इसीलिए हम अपने पापों के बावजूद अस्तित्व में हैं। वह दयालु है, वह हम पर अपना क्रोध नहीं रखता, और वह स्वतंत्र है क्योंकि मसीह ने हमारे लिए कीमत चुकाई है। तो ईश्वर न्यायकारी है, लेकिन वह आगे कहते हैं कि फिर भी वह दोषियों को बख्शा नहीं छोड़ते, भला वह कैसे हो सकता है? उन्होंने सभी दोषियों को माफ कर दिया है और अब हमारे पास दोषी नहीं है। मेरी समझ में सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप उनकी कृपा को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप अभी भी अपने पाप में हैं और दोषी हैं। परंतु यदि तुम उसके अनुग्रह, उसके बलिदान और उसकी क्षमा को स्वीकार करते हो, तो तुम्हें क्षमा कर दिया गया है। जैसे हमने उन्हें क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को भी क्षमा करो। और वह हमारे सब अपराध क्षमा करता है। यह हम पर उनकी कृपा है। हालांकि हम भले ही दुष्ट रहे हों, हमारी कोठरी में जो भी कंकाल हैं, वे हमसे उतनी ही दूर चले गए होंगे जितनी दूर पूर्व पश्चिम से है, क्योंकि भगवान दयालु हैं और उनकी कृपा हमारे पापों से अधिक है। तभी तो वह हमारे साथ रह सकते हैं, हमारे बीच में रह सकते हैं, ये उनके संचारी गुण हैं। यह भजन की पुस्तक पर अपने शिक्षण में डॉक्टर ब्रूस वाल्टके हैं। यह सत्र संख्या 7 है, भजन स्तुति का कारण, भजन धर्मशास्त्र।